narayana narayana na sri vallarayana narayana sri vallarayana narayana 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 shyavar ram chandra ki jai mor mukta bansi wale ki jai na chinta janto ma ye jana parayu paasati
कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हुए और उस कोटि की मेरी जो भक्ति करते हैं उपासना करते हैं उस कोटि की उपासना वही है श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर जो उपासना है वो उस कोटि की समझी जाती है। इस प्रकार की उपासना करने वाले और नित्य जो मेरे में लगे हुए हैं नित्य निरंतर जो मेरी भक्ति में जो लगे हुए हैं उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूं। जैसे पशु भार बहन करता है इस प्रकार से उसका मैं भार बहन करता हूं। जैसे कुल्ली जो है मजूर वह जैसे भार बहन करे बोझा ढोए इस प्रकार से मैं उसका भार बहन करता हूं। योगक्षेम क्या है? अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम। ये योगक्षेम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक यानी आध्यात्मिक। लौकिक योगक्षेम क्या है कि जो इस प्रकार से मेरा चिंतन करते हुए और मेरी भक्ति करते हैं ना उसका लौकिक योगक्षेम तो यह है कि उसके पास में रुपये या मकान या ये सब जो कुछ है उसकी तो मैं रक्षा करूं और जो प्राप्त नहीं है उसकी मैं पूर्ति करूं। ये लौकिक योगक्षेम है। कोई भाई मिलते हैं पूछते हैं क्यों आजकल योगक्षेम कैसे चलता है? उसका माना ये कि जीविका ठीक चलती है ना, तो भगवान का ये कहना कि उसकी जीविका मैं चलाता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। एक तो ये योगक्षेम। दूसरा योगक्षेम ये है कि जो एक आदमी साधन है भजन ज्ञान सेवा सत्संग आदि साधन कर रहा है उसके साधन की भी मैं रक्षा करता हूं कि वो साधन कायम रहे और उसके साधन में कोई विघ्न न पड़े। वो कोई कामना भी कर ले उसको रुपया दो धन दो तो भगवान समझते हैं कि इसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसका लक्ष्य सर्व के मां परमार्थ की तरफ है, जिसको मुक्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, वो परमा से अप्राप्त है, तो भगवान कहते उसकी प्राप्ति में करा देते। तो ये पारमार्थिक जो विषय हुआ कि परमार्थ विषय में, आत्मा के कल्याण के विषय में, आत्मा के उद्धार के विषय में भगवान दो प्रकार की मदद करते हैं। एक तो उसकी रक्षा करते हैं कि उसका जो धन संचित हो चुका है उसकी रक्षा करते हैं, कौन सा धन, आत्मा के कल्याण करने के विषय का जो धन है, साधन वगैरह, कबीरा फर्द निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सोई जाने जन के राम नाम से, कबीर सभी निर्धन हैं, धनवान कोई नहीं, वो सच्चा धनवान है जिसके पास में राम नाम की पूंजी, उस धन की जन तपस्या की, उसके भजन की मैं रक्षा करता हूं कि कायम रखता हूं, और उसमें जो कमी है उसकी पूर्ति करता हूं। दूसरा इसका ये भाव है कि आज तक जिसकी प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, परम धाम की परम पद की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो मैं उसको देता हूं। ये इसका एक सर्वार्थ है। इसी को समझाने के लिए एक कहानी कहता हूं मैं, कि एक ब्राह्मण थे, बड़े उच्च कोटि के पुरुष, ईश्वर की भक्ति करते थे, गीता का पाठ करते थे, और त्यागी सुपात्र ब्राह्मण, और वे चार भाई थे, तो ये सबसे बड़ा था और बड़ा धर्मात्मा था। प्रातःकाल उठ करके चार बजे जंगल में तालाब था, वहां जाते और शौच स्नान कर करके, और वहां संध्या का आरती जप ध्यान पूजा पाठ ये अपना किया करते, और नित प्रति 18 अध्याय का पाठ करती गीता का, और वहां से 12 बजे घर पर पहुंच जाते, आकर भोजन करते, भोजन करके दिन भर, फिर मैंने वहां जाकर पूजा पाठ भजन चालू करते, भोजन के बाद 1 बजे अपने चले से, इस तरह से थी अपना समय बिताते। सायंकाल के उन्होंने भी इसी प्रकार से संध्या गात्री स्वस्नान संध्या गात्री करके, और रात के वहां 8 बजे वहां से आते, और 8 बजे आकर फिर भोजन करके अपने जो धर्मपत्नी वो भी पतिव्रता थी उनसे बातचीत करते, और रात्रि के वहां भाइयों से कोई बात करनी होती करते, 10 बजे सोते, 4 बजे उठते, जैसे आजकल हम लोग करते, 10 बजे सोते हैं, 4 बजे अंदाज, ऐसा उसका कार्यक्रम चलता था। उनके जो तीन भाई है वो रोजगार किया करते थे, और वो केवल खर्च किया करता था, जैसे हमारे भाई लोग तो खर्च करते हैं, हम रोजगार करते हैं और हम खर्च करते हैं। एक दिन की बात है, सभी भाई इकट्ठे होकर के बोले कि आपकी काम करने की तो शक्ति है ही, हम लोग तीनों भाई खटते हैं, तो आप भी थोड़ा चेष्टा करें, अच्छा हो। उसने कहा कि अनन्यास चिंतन तो मांगे जना परिपास नित्यानूर्ता नाम योग, की जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए और मेरी जो उपासना करते हैं भक्ति करते हैं उन पुरुषों का मैं योगक्षेम करता हूँ। तो भगवान सब का योगक्षेम करते हैं, फिर भगवान की भक्ति में सबको लगना चाहिए। तो सभी भगवान की भक्ति में लग जाना तो खाएं क्या? हम लोग रोजगार करते हैं, रुपया कमाते हैं तो अपने घर का काम चलता है, आपके भरोसे थोड़ा चलता है। उसने कहा कि काम तो भगवान के भरोसे पर चलता है, ये अभिमान अभिमान तुम्हारा है। तो बोला हम तब देखें कि एक प्रकार से आप उससे अलग हो जाए और फिर आपका काम भगवान चलाए बिना किसी के। बहुत अच्छी बात, चार भाई थे सब अलग अलग, उनके भी हिंसा में कुछ आ गया मामूली आभूषण कपड़ा कुछ रुपया और कच्चे घर से तो एक संजय की छोटा घर भी मिल गया और रसोई के लिए कुछ बर्तन थोड़ा पहनने के लिए वस्त्र ये जो हिस्से के अनुसार मिल गया। और वृत्तेश्वर ब्राह्मण थे इसी प्रकार से थोड़ी बीच भी उसके जिम्मे लगा दी। अब होने के बाद उसने अपने स्त्री से कहा कि अपने तो किसी के पास जाना नहीं है, लेना नहीं है, मांगना भी नहीं है, किंतु हम लोग वृत्तेश्वर ब्राह्मण होने के नाते पर कोई यजमान अपने घर के ऊपर देने के लिए आ जाए तो अपने लेना नहीं, लेना तो भगवान से ही और किसी से नहीं। असली पतिव्रता थी, बहुत अच्छी बात है। तो उनके पास में जो रुपये थे वे थोड़े दिन में समाप्त हो गए, 150 रुपये थे। वो कितने दिन की? उसने कहा कि महाराज रुपये सब खत्म हो चुके और क्या है तो आप जानते हैं, जो कुछ भाइयों ने आपके हिस्से में दिया जो मामूली गहना है बोले उसको बिक्री करो। तो बिक्री कर दिया, उसे भी कुछ दिन काम चला, गहना भी कोई शोर हो सका, भूमि सौदने के बाद तमाम श्री ने फिर कहा हमारा अब तो कुछ नहीं है, गहना भी नहीं था वो बेच दिया। अब क्या है तो ये घर है जिसमें हम रहते, थोड़ा कपड़ा और बर्तन जो घर भाड़े ले लो इसको बेच दो। घर को बेच दिया, 2 से 3 से रुपया बैठा, मामूली घर था। दूसरा 1-2 रुपया महीने में कच्चा घर भाड़े ले लिया, रहने लगी, 2 रुपये भी समाप्त, हमारा दिन खत्म। और क्या बोले घर में थोड़ा बर्तन है और कपड़ा और पुलिस को भेजता हूँ कुछ मतलब वो भेज दिया। वो भी महीने दो महीने काम चले उसके फिर उसने कहा कि महाराज अब कुछ भी नहीं, ये घर तो भाड़े का है, अब पड़ोस को मालूम हुआ कि इनका बर्तन बिक गया तो वो रसोई बनाने के वास्ते बर्तन उड़ गए और भाड़ा जो है सो कल तक का दिया हुआ परसों के वास्ते कोई रहने की दिया नहीं। और कपड़ा के वहां एक धोती जो आपके तन पर है ये और एक बदलने के लिए ये, और मेरे पास भी इसी प्रकार से एक साड़ी जो मैं पैर रखी हूं और एक और सुनाने के मुर्त में बदलने के और बोलो और तो कुछ ठीक है। ये बात रात्रि में कह दी थी कि कल के लिए आपने उपवास है, भोजन की तजवीज दी। चार चार बजे गए, गीता का पाठ करने लगे, फिर ये श्लोक आया, अन्या सिंधी हम तो मांग ये जना पर उपास सांग नित्यायुक्ता मांग योगक्षण पढ़ कर देखा भी ये तो भगवान का वचन नहीं। यदि भगवान के वचन होते तो भगवान योगक्षण कर, ये होश के क्षेपक है, तो क्षेपक है तो फिर हम क्यों पढ़े इसको। अपने आसन में आगे हड़ताल रहा करती थी, हमारी देखी हुई है पुराने जमाने में, 50 वर्ष के पहले की बात कहता हूं, जो आदमी पूजा पाठ करता तो एक छोटी सी हड़ताल की टिकट रखती थी। इसलिए कि गीता का रामायण का भागवत का किसी का पाठ करते उसमें वो अशुद्धि होती तो हड़ताल से उसको मिटा, जिस पर हड़ताल फेर दी बस वो समझ गए मिट गए। तो उसने उस श्लोक पर हड़ताल फेर दी कि ये भगवान का वचन नहीं, हड़ताल लगा दी। हड़ताल लगाने से वहां भगवान की वृत्ति दो आई, वो ये तो हड़ताल लगा दी गीता के। भगवान ने सोचा भी इसका दोष नहीं, दोष तो हमारा है, हमने परीक्षा के लिए हद कर दी थी, ऐसा कोई बात नहीं चलो। तो भगवान एक 16 वर्ष के बालक का रूप धारण करके के बड़ा सुंदर रूप उसके घर के ऊपर गए, जाकर के कहा गुरानी जी ये पंडित जी के लिए मैं लाया हूं भोजन, भोजन की एक थाली भर करके लाए। उन्होंने कहा कि हमारे को लेने का हुक्म नहीं है। बोले मैं गुरु जी के लिए और आपके लिए लाया हूं, ये इसके लिए क्या हुक्म कोई, ये तो एक साधारण बात है, तो जो भी कुछ हो मैं नहीं ले सकता। गुरु जी कहां गए, बोले गुरु जी तो वन में गए, कब आवाएंगे, बोले 12 बजे आ गए, तो मेरे जरूरी काम है, मैं गुरु जी से फिर मिलूंगा। और ये रखिए, ये तो एक प्रकार से तो भोजन के लिए जाए, गुरु जी के लिए आपसे बोलो, हमारे पति जी तो किसी को शिष्य बनाते नहीं, बोलो किसी को भी नहीं बनाती, मैं तो मुझको बना चुकी, मैं एक ही उनका शिष्य हूं, और मैं तो कभी उन्होंने शिष्य बनाया नहीं, बनाया नहीं, अब बना लिया तो बना ही लिया, हमने तो कभी नहीं सुना। बोले आपको मालूम गुरु जी जानते हैं, बोला हमने तो कभी मैं देखा न सुना कोई बात ही नहीं। बोले आप पूछ लेना गुरु जी, तुम्हारा नाम, नाम हमारा गुरु जी जान, गुरु जी जान, गुरु जी को मैं क्या कहूं। बोले आप कहना नहीं पड़ा, ऐसा कहकर के जाने लगे तुम्हें, तो बोले आप अपना वापस ले जाओ, गुरु जी आओ तब फिर ले आना। तो लेने एक प्रकार से एक घोड़ा बन जाए, ये मैं मिलूंगा जरूर गुरु जी से, तो आपका परिचय तो जो आपका नाम, बोले नाम की जरूरत नहीं है, गुरु जी ने यह कह देना कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर हड़ताल लगाई थी वही था, ये कहकर भागे भगवान को पकड़े को। इतने में थोड़ी देर के बाद गुरु जी, गुरु जी ने देखा एक थाली मिठाई की भरी हुई है, जिसमें बर्फी लाडू जलेबी, दुष्सज्जे के कहा कि ये परोसा सा दिखता है, मिठाई भरी दिखती है, कौन लेगा। बोले आपका जो चेला, मैं तो चेला बनाता ही नहीं, मेरा काम है। मैं तो जानते मैंने मना नहीं दी ये बात कही, और उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी से मिल लूंगा, गुरु जी मुझको जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। उसका नाम नाम तो उसने बताया नहीं, तो तुमने क्यों रखा? बोले जबरदस्ती छोड़ के लाए, छोड़ के लाए, ये चीज कहाँ भेजे हम? वो बोले कि मैं आऊंगा, बोले तुमको रखना नहीं चाहिए, जबरदस्ती भेज दिया। तो जबरदस्ती ने क्या, तो नाम पता तो पूछना था, उन्होंने नाम पूछा, विशेष आग्रह करने पर ये कहा कि आज ही प्रातःकाल गुरु जी ने मेरे मुख पर हड़ताल लगाई कि इतनी बार में गुरु जी भूल जाए हैं, तो आप जिसके मुख के ऊपर हड़ताल लगाए वो था। जब ये हड़ताल तो गीता के श्लोक पर लगाई, पर गीता के श्लोक भगवान के मुख से निकले तो वे तो भगवान ही थे। तो देव प्रकार से वो व्याकुल होकर विलाप करने लगा, तुम्हारा अव भाग्य, तुम्हारे को तो भगवान के दर्शन हो गए, मैं वंचित रह गया, वो तो भगवान ही थे, मैंने तो भगवान के शिरों पर हड़ताल लगाई थी। मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा नीच हूं कि एक दिन भी भूख नहीं निकाली, आज तो लाडोर पर भी आएंगे, करके भोजन करके सोए थे। अब रोने लगा, विलाप करने लगा कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं बड़ा पापी, बड़ा नीच हूं, जो एक प्रकार से आपके ऊपर निर्भर होकर के भी निर्भर नहीं रहा। स्त्री का हमारा चला भोजन तो कर लो, तो भोजन तो जो वो कह गया कि मैं आऊंगा तो उसके आने पर ही करेंगे। और बोलो एक घोड़ा बांध गया है, बोल क्या घोड़ा भूखा होगा, अपने पास तो कुछ है नहीं, घोड़े को खिलाए, वहां गए तो बोला भूजा तो तारो इसकी पेट पर लगा हुआ है, तो भूजा उसकी गूंज में देखा तो हीरे पन्ने माने के असर से जो लाखों रहता, तो वो भी निश्चय हो गया कि बिना भगवान के कौन लाऊ, तो वो उतार कर अपने घर में रखा। तो फिर एक प्रकार से घोड़े को कुछ दाना और घास मंगा कर दे दिया, और सायंकाल का वक्त हो गया, उसने कहा हमारा जब तो भोजन करो, वो भोजन तो भगवान के आने पर ही करें। बोले उसका क्या भरोसा है, भरोसा के अन्य आएंगे तो भोजन नहीं करेंगे। रात की 10 बजे सोने का समय हो गया, बोले महाराज जब सोने का समय हो गया अब तो भोजन करके सो, तो नहीं भोजन तो उसके आना प्रेफर सो गई, थोड़ी नींद भी आ गई। जब 11 बजे तब फिर भगवान आए, फाटक खड़खड़ाए, दर्जे दरवाजे के फाटक खड़खड़ाए, तो उसकी गुरु जी कुमार को लो, गुरु जी कुमार को, तो उसकी स्त्री ने उसकी बोली पहचानी, बोले महाराज यही था। अब तो दोनों दौड़े, कबाड़ खोल के लंबे पत्र के भगवान के चरण, पंडित जी रोने लगे कि महाराज मैं बड़ा अपराधी, बड़ा भारी पाप, आप तो बड़े दयालु हो, किसी को मैं कैसा नहीं छू। अब भीतर में आए भगवान, भगवान ने कहा कि भोजन कर लिया? बोले नहीं। क्यों? बोले आपके बिना हम कैसे करें, आप कह गए थे ना कि मैं आऊंगा, वो बोले मेरे को जरूरी काम हो गया, बिलम अब तो आप आए अब तो भोजन करो, बोले तुम करो, बोले हम अकेला करें, बोले हम अकेला करें, तो बोले सब साथ ही करो क्या। तो एक प्रकार से अलग अलग दिया गया और भोजन किया था। बस भोजन करने के बाद हाथ पैर सब धोकर के भगवान खुश थे, वह ने कहा कि मैं तुम्हारे पर खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा हो तुमने। तो प्रभु जब आप आ गए, आपके दर्शन हो गए, तो मानना क्या बाकी रहा? आपके दर्शन से भी कोई बढ़कर चीज है क्या? पर तो हमारे संतोष के लिए कुछ मांगो। तो मेरे प्रभु, मैं यही आपसे मांगता हूं कि आज तक तो मैं आपका भक्त रहा और योग क्षम के लिए आपकी भक्ति करी, अब तो मैं योग क्षम आत्म मानता हूं, फिर मैं निर्योगक्षम हो जाऊं। योगक्षम की इच्छा भी मेरे दिल से उड़ जा, भगवान ने कहा था। तो ऐसा हुआ, ऐसा वरदान देकर के भगवान अब अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। पर ये खूब मोह से रहने लगा। उनके जो भाई थे उनकी उनकी दुर्दशा, वे जुआ खेला करते। जब तक भाई था घर में तब तो उसका भय रहता, जुआ नहीं खेली, और उसके जाने पर सट्टा करने लगे, फाटका करने लगे। उस समय में अनेक प्रकार की सौदा आया करते थे, जैसे चांदी का सौदा है, तीसी का, ऐसे अफीम का, ऐसे बादलों को लेकर के बाजी लगाना, जैसे घुड़दौड़ की बाजी लगाना, इस प्रकार से थी। वे बाजी धर के जुआ खेल, तो जो कुछ था समाप्त हो गया। तो सिर्फ ऋण हो गया, जगह जीवन सब डाय रख दी गई, गिरवे पर मारे मारे फिरे। एक प्रकार से कोई अपने घर पर या दुकान पर न्याय देता, बोले ये बड़े अपने भगवान से, इनके लक्षण बड़े खराब। कुछ दिन एक प्रकार से धारा मिला, फिर मिलना बंद हो गया, फिर भीख मांग खाने लगी, वो भी बंद हो गई। किसी ने कहा, अरे तुम तो भीख मांगते हो, पर तुम्हारा भाई तो मालोमाल है, अरे वो तो कोई भी पर जाता है तो खाली हाथ नहीं आता। कोई जा कहता है कि मेरी लड़की का विवाह है, तो हमारे को 50 रूपया दिए, एक असर दिए तो उसको 2 देते, ये 50 से क्या होगा? इस तरह से वो तो खूब जान मानता है, तुम तो भीख मांगते फिरते हो। वो उपकार करता तो उनके पास क्यों नहीं जाते? बोले हम क्या मुंह लेके के जाए, हमारा प्यार अच्छा नहीं हुआ, आखिर में तंग आ गए। गए भाई ने उनका आदर किया, कुछ क्षेम पूछा परस्पर में, पूरे रोने लग गए कि क्या पूछो, घर द्वार सब गिरवे पड़े हैं,